अध्याय पांचवा। महावीरदास टाट वाले बाबा की गुफा से प्रस्थान कर मैं पुनः एक यायावर साधु का जीवन जीने लगा। सर्दी का मौसम धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा था। सूर्य दिन प्रतिदिन और गर्म होने लगा तथा दिन लंबे होते गए। वसंत की कलियां वृक्षों और झाड़ियों में फूटने लगीं। एक दिन मैं जंगल के रास्ते से उत्तर दिशा की ओर चलकर लक्ष्मण झूले तक पहुंचा, जो गंगा नदी पर बना झूलता हुआ एक विशाल पुल है। उस हल्के से झूमते हुए पुल के बीच खड़े होकर मैं हिमालय से नीचे बहती गंगा मैया के दर्शन करने लगा, जो दोनों ओर मंदिरों, आश्रमों तथा अनुष्ठान करते ऋषियों से भी सुशोभित थी। लक्ष्मण झूले को पार कर मैंने एक पगडंडी पकड़ी और जंगल की ओर जाने लगा। अचानक मेरी आंखों के सामने एक हृदय विदारक दृश्य आया, जिसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। अनेक मरणासन्न व्यक्ति भूमि पर पड़े पीड़ा से कराह रहे थे। उनमें से कुछ निर्वस्त्र थे और कुछ अपने अंगों पर फटे चिथड़े लपेटे हुए थे। उनके चेहरे सिकुड़कर विकृत हो चुके थे, उनकी नाक गल चुकी थी और उनके हाथों एवं पैरों में अंगुलियों के स्थान पर रक्तरंजित ठूंट बज गए थे। भूख से सूख चुके वे लोग गड्ढों के बिस्तरों में लेटे थे और सर्दी से बचने के लिए उन्होंने मिट्टी को कंबल के समान ओढ़ा हुआ था। व्याकुलता भरी आंखों से मेरी ओर देखते हुए वो लोग याचना करने लगे। मैं आतंकित हो गया। मैं समझ गया कि मैं कोढ़ियों की एक बस्ती में आ पहुंचा था। 20-30 कोढ़ी मुझे घेर कर चिल्लाने लगे, बख्शीश बख्शीश बख्शीश। वे सभी अपने रक्तरंजित विकृत हाथ पसारकर भीख मांगते हुए मेरी ओर बढ़ने लगे, परंतु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। मैं सड़ते मांस की एक चार दीवारी में घिर चुका था और एक भी पग नहीं हिल पा रहा था। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। बख्शीश बख्शीश बख्शीश, वो भीड़ इतना कसकर मुझे धकेल रही थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैं चाहकर भी उनकी सांसों और रिश्ते गलते मांस की दुर्गंध से बच नहीं पा रहा था। बख्शीश बख्शीश उन्होंने रट लगा रखी थी। दुविधा से मेरा मन चकराने लगा। एक ओर मैं जहां इस प्रकार घेरे जाने पर क्रोधित था, तो वहीं दूसरी ओर ये सोचकर मुझे उन पर दया आ रही थी कि दुर्दशा के कारण उनका ये व्यवहार उचित भी था। अंतहीन से प्रतीत होते 20 मिनट आखिर बीत ही गए। मैं व्यथित हो पूरी परिस्थिति को समझने का प्रयास करने लगा। मैंने सोचा, कोढ़ छूत की बीमारी है, क्या मैं भी उससे पीड़ित हो इन्हीं के साथ दुख भोगता हुआ मरूंगा? क्या ये भीड़ कभी मुझे छोड़ेगी? बख्शीश बख्शीश चिल्लाते हुए कोढ़ी एक दूसरे को खींचते हुए धकलते हुए भयंकर गुत्थम गुत्थी कर रहे थे। वेदना भरी दृष्टि से घूरती हुई उनकी आंखों ने मेरे अंतकरण को जला दिया। अंततः वे कुछ मूल्यवान वस्तु पाने के लिए मुझे टटोलने लगे, जो मैंने उन्हें नहीं दिया उसे वे बलपूर्वक छीनने का प्रयास करने लगे। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वे मुझे छोड़कर चले गए। एक गहरी सांस लेकर मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन फिर थम गया। मैंने भूमि पर पड़ी निथड़ों में लिपटी एक पीड़ाग्रस्त बूढ़ी स्त्री को देखा। उसकी नाक उसके विकृत चेहरे के सड़ते मांस के साथ गल गई थी। हमारी आंखें मिली। उसके अश्रु भरे नेत्रों में मुझे मां की ममता का एहसास हुआ, ऐसे स्नेह का जो सच्चा एवं दुर्लभ था। वो मुझसे और कुछ नहीं, केवल इतना चाहती थी कि मैं अपना हृदय खोलकर उस प्रेम को स्वीकार करूं जिसे वो किसी के साथ बांटना चाहती थी। वो एक सुंदर स्त्री थी। उसने अपने अंगुली रहित हाथों को आदर के साथ जोड़ा और फिर मुझे आशीर्वाद देने के लिए उन्हें दूर से ही आगे बढ़ाया। उसके स्नेह के आगे छूत संबंधी मेरी आशंका नष्ट हो गई। मैं दौड़कर उसके निकट गया और आशीर्वाद पाने के लिए अपना शीश झुका दिया। मेरे बच्चे, भगवान तुम्हारा भला करें, उसने आशीर्वाद दिया और भगवान से मेरी भलाई की प्रार्थना करने लगी। मैंने ऊपर देखा और पाया कि उसका चेहरा एक अलौकिक आनंद से दमक रहा था। कुछ देने का आनंद। मैं रो पड़ा। इस अविस्मरणीय आशीष के सामने पूरी यातना का मूल्य नगण्य था। मैं आगे चलते हुए नदी के किनारे एक स्थान पर आया और वहां से नीचे बहती धारा के प्रवाह को देखने लगा। मैंने उफनती लहरों के नीचे देखने का प्रयत्न किया, लेकिन उनकी सतह के नीचे की रहस्यमयी गहराइयों को देख पाने में असफल रहा। यद्यपि वो स्त्री घिनौने रोग से ग्रस्त थी, सतह के नीचे वो एक सुंदर आत्मा थी जो केवल प्रेम करना और प्रेम पाना चाहती थी। अपने विचारों में मैंने उस उपमा को और विस्तारित किया। आज नदी दिखा रही है कि हमारी प्रवृत्ति दूसरों की बाह्य अवस्था देखकर उनके बारे में अच्छे बुरे की धारणाएं बनाने और केवल उनके दुर्गुणों को ढूंढने की है, किंतु यदि हम उनकी सतह के नीचे खोजेंगे तो हम पाएंगे कि असंख्य तत्व मिलकर एक व्यक्ति के स्वभाव का निर्माण करते हैं। दूसरों में हमें जो दोष दिखते हैं वे विषम परिस्थितियों के परिणाम हो सकते हैं, या ऐसी मानसिक प्रतिक्रियाएं जो सदमे, आघात, शोषण, परित्याग, मोहभंग, असुरक्षा की भावना, पीड़ा, उलझन या रोग से उत्पन्न होती हैं। मैं उन लोगों के विषय में सोचने लगा जिन्होंने इस्तांबुल में मुझे लगभग मार ही दिया था, उन जातिवादियों के बारे में जो जनाधिकार आंदोलन में अश्वेतों से घृणा करते थे, और उन लोगों के बारे में जिन्होंने मेरे लंबे बालों के कारण मुझसे दुर्व्यवहार किया। मैं सोचने लगा कि स्वयं मैंने भी कैसे अपने से पहली पीढ़ी का विरोध करते हुए वरिष्ठ अमरीकियों को धन और सुरक्षा के प्रति चिंतित देखकर उन्हें गलत माना था, जबकि वास्तव में उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन का सामना किया था, ऐसी समस्या जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि हम किसी के बुरे आचरण के मूल कारण को समझ जाएंगे तो घृणा की अपेक्षा उस पर करुणा दर्शाएंगे, क्योंकि क्या प्रत्येक आत्मा मूलतः अच्छी नहीं है? एक सज्जन रोग से घृणा करेगा परंतु रोगी से प्रेम करेगा। मैंने ऋषिकेश को छोड़कर उत्तर में हिमालय की और ऊंचाइयों पर जाने का निश्चय किया। देवप्रयाग में मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसका चरित्र मेरे मानस पटल पर सदा सदा के लिए अंकित है। एक सर्द सुबह जब तारे धूमिल हो रहे थे और नए दिन का सूर्य उदित होने ही वाला था, मैं पर्वत से उतरकर उस स्थान पर पहुंचा जहां भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। हम संगम से आगे नदी का नाम गंगा पड़ता है। वहां नदी का गीत कोलाहलपूर्ण था। नदी के भीषण प्रवाह की शक्ति से अनभिज्ञ मैं स्नान हेतु उसमें उतर पड़ा। मैंने जैसे ही एक कदम बढ़ाया, तेज प्रवाह ने मेरे पैर उखाड़ दिए और मैं खतरनाक ढलानों की ओर बहने लगा। उसी समय मेरे निकट स्नान कर रहे एक बलवान व्यक्ति ने मेरी भुजा को अपने शिकंजे में पकड़कर अपनी ओर खींचा और मुझे तट तक ले गया। मेरे रक्षक ने फिर अपनी दाहिनी हथेली मेरे सिर पर रखी और पूरे हृदय से मेरे संरक्षण के लिए मंत्रों का जप करने लगा। इस प्रकार मैं पहली बार कैलाश बाबा से मिला। कैलाश बाबा लगभग 60 वर्ष की अवस्था के थे। उनका शरीर बलशाली था और उन्होंने अपनी सफ़ेद होती जटाओं को सिर पर बांधा हुआ था। जब वे जटाएं खोलते तो वे जमीन तक लटक जातीं। अनेक दशकों से उन्होंने अपने शरीर के किसी भी बाल को नहीं काटा था। उनका चेहरा चौकोर, लंबी भूरी आंखें, ऊंचे कपोल और मुंह में सारे दांत सलामत थे, जो वृद्ध साधुओं में अत्यंत दुर्लभ है। उनके तन पर कंधों से पैरों तक एक ही वस्त्र था। वे अपने हाथ में लोहे का एक त्रिशूल रखते थे जिसके ऊपर एक बड़ा डमरू बंधा रहता था। उस डमरू के दो सिर थे। प्रत्येक का व्यास लगभग 12 इंच था और उसके बीच रस्सी से बंधी एक गेंद लटकी हुई थी। जब बाबा डमरू हिलाते तो वो गेंद घूमती हुई दोनों सिरों पर टकराकर ऊंची आवाज करती। लोहे का एक भिक्षापात्र और एक पुराना कंबल ही उनकी संपत्ति का कुछ हिस्सा था। कैलाश बाबा ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे सिखाया कि एक यायावर साधु को कैसे जीवन यापन करना चाहिए। ठंडी रातों में हम नदी को देखते देखते पहाड़ों के किनारे सो जाते। एक रात उन्होंने मुझे अपना कंबल दिया और मेरे बार बार मना करने पर भी वे जोर देते रहे। तत्पश्चात अनेक रातों तक हम एक साथ एक ही कंबल में सोए। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे जंगल के कंदमूल फलों और पत्तों की पहचान कर भोजन और औषधियाँ प्राप्त की जा सकती है। मुझे गांव में ले जाकर उन्होंने सिखाया कि किस प्रकार सद्व्यवहार के साथ साधु आदरपूर्वक भिक्षा मांगता है। पश्चिम संस्कृति के विपरीत यहाँ साधुओं द्वारा गांवों में भिक्षा मांगना जीवन यापन का एक सम्मानजनक तरीका माना जाता है, क्योंकि लोग साधुओं से इतना कुछ पाते हैं कि बदले में वो भिक्षा देकर उनकी सेवा करते हैं। कैलाश बाबा जैसे महान व्यक्ति को भिक्षा मांगता देखकर मुझे लगा कि भिक्षा मांगना भी एक महान कार्य है। उन्होंने मुझे सूखे चूड़े पर निर्वाह करना सिखाया। ये सबसे सस्ता भोजन है और कोई भी बनिया प्रसन्नतापूर्वक इसे दे देता है, और क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होता, इसलिए जंगल में हफ्तों तक इसे खाकर निर्वाह किया जा सकता है। भोजन के लिए उसमें केवल नदी का जल मिलाने की आवश्यकता है। उन्होंने मुझे सिखलाया कि कैसे शरीर को स्वच्छ रखा जा सकता है। नीम की दातुन से दांत मांजना और नदी की मिट्टी से शरीर को रगड़कर नहाना। खाने और स्वच्छ रहने की शिक्षाओं के अतिरिक्त उन्होंने मुझे न केवल पवित्र नदियों, मंदिरों, वृक्षों, सूर्य चंद्र और यज्ञाग्नि का अपितु सांप, बिच्छू एवं सभी जंगली जानवरों का भी आदर करना सिखाया। वे अंग्रेजी नहीं बोलते थे, लेकिन उनमें अपने विचार मुझ तक संप्रेषित करने की एक जादुई शक्ति थी। विशेषतः ये विचार कि भगवान सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। उदाहरणतः उन्होंने मुझे एक विषैले सांप के हृदय में स्थित आत्मा को देखना और उसे चले जाने का स्थान देकर उसका सम्मान करना सिखाया। साधुओं की संगत के दौरान अन्य साधुओं को विभिन्न उपाधियों के आधार पर संबोधन करना और उनके साथ भोजन करने का शिष्टाचार भी उन्होंने मुझे सिखाया। एक साथ भ्रमण करते हुए धीरे धीरे मेरे पिता तुल्य बनते गए और वे मुझ पर इतना प्रेम बरसाने लगे मानो मैं उनका पुत्र ही हूँ। यद्यपि हमने कभी बात नहीं की, किंतु जहाँ हृदय में परस्पर स्नेह होता है, वहाँ भावनाओं की अभिव्यक्ति भाषा की सभी सीमाओं को लांघ देती है। एक सादे संकेत से अंगुली दिखाने, मुस्कुराने या भौहें सिकोड़ने से उन्होंने मुझे वो सब कुछ सिखा दिया जिसकी मुझे आवश्यकता थी। दिखने में वे एक भयंकर उबड़खाबड़ पहाड़ जैसे व्यक्ति लगते जो तपस्या से कठोर होकर हाथ में त्रिशूल उठाए घूमते थे, किंतु मैंने उनमें एक ऐसा व्यक्ति पाया जो मुझे अब तक मिले सर्वाधिक दयालु और सज्जन पुरुषों में से एक था। हम जो भी सादा भोजन एकत्रित करते, वे पहले मुझे भरपेट खिलाते और फिर स्वयं खाते। जब मैं पहले खाने से मना करता तो वे सहजता से मुझे अपनी अबोध दृष्टि से पराजित कर देते। वास्तव में वे जब भी मेरी ओर देखते, स्नेह भरे आंसू उनकी आंखों में उमड़ आते। स्नेह के एक पर्वततुल्य कैलाश बाबा के प्रति मेरे हृदय में ऐसा प्रेम था जैसा एक आजीवन मित्र के प्रति रहता है। उनसे एवं अन्य लोगों से मैं हिंदू धर्म में पाए जाने वाले भगवान के विभिन्न रूपों और देवी देवताओं के विषय में जानने लगा। मैं उन देवताओं की प्रतिमाओं और उनके द्वारा लिए गए विभिन्न स्वरूपों के विषय में कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे लिए वे सभी नए थे। किंतु मैं देख सकता था कि ये मूर्तियां गहरे प्रेम और भक्ति को प्रेरित करती हैं। मेरे मन के द्वार खुले थे और मैं सब कुछ समझने के लिए उत्सुक था। कैलाश बाबा के आराध्य देव शिवजी थे। शिवजी ईश्वर के वे स्वरूप हैं जो भौतिक जगत और उसके संहार के नियंत्रण करते हैं। कैलाश बाबा निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहते। जब हम जंगली पथ से गुजरते तो वे ऊंची आवाज में शिव पार्वती के नाम पुकारते, जय शंकर, हे विश्वनाथ, हे केदारनाथ जी, जय श्री पार्वती और हे उमा माता। जब भी हम अन्य शैवों के पास होते तो हम एक साथ मंत्रोच्चारण करते। कीर्तन जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता था तो कैलाश बाबा हर्षातिरेक में जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगते। उसकी आवाज लगभग बहरा कर देने वाली होती। वो डमरू साधुओं को हर्ष से उन्मादित कर देता। वे पागलों की भांति अपना सिर घुमाने लगते और उनकी जटाएं इधर से उधर लहराने लगती। कुछ साधु ताली बजाने और शेष अपने पैरों पर खड़े होकर एक दैवी नृत्य करने लगते। बिना ठौर ठिकाने के इन साधुओं में कैलाश बाबा का बहुत सम्मान था। जंगल में एक वृद्ध तपस्वी ने मुझे चुपचाप बताया कि कैलाश बाबा सैकड़ों वर्ष बूढ़े हो सकते थे, किसी को भी उनकी वास्तविक उम्र का ज्ञान नहीं था। उनके पास रोगियों को ठीक करने और अद्भुत कार्य करने की अलौकिक योग सिद्धियां थी। लगभग 30 वर्ष पूर्व मैंने प्रत्यक्ष इनके चमत्कारों को देखा था। उस व्यक्ति ने कहा, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और बाबा को भगवान की तरह पूजने लगी, लेकिन बाबा ने जान लिया था कि आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य सिद्धियों या ख्याति की प्राप्ति नहीं है। उन्होंने प्रण लिया कि वे कभी भी अपनी इन शक्तियों का प्रदर्शन या वर्णन नहीं करेंगे। उन्होंने न तो शिष्य बनाए और न कोई कोई आश्रम खोला, अपितु अकेले हिमालय के वनों में घूमते रहे। मुझे ये जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि कैलाश बाबा के पास महान योग शक्तियां थी। निश्चित ही मैं उनसे प्रभावित था, किंतु मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया उनके चरित्र ने और अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रति उनकी समर्पित भक्ति ने। जैसे जैसे दिन बीते, मुझे एहसास होने लगा कि कैलाश बाबा के एकांत में जाने की इच्छा हो रही है। मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था और समझ गया कि मेरे लिए भी अब आगे बढ़ने का समय आ चुका था। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैंने उनसे आशीर्वाद की याचना की। बाबा जी ठहाका लगाकर हंस पड़े, फिर उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कसकर भालू के समान मेरा आलिंगन किया। तब एक मंत्र उच्चारण करके उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। विदाई के समय उनके हृदय की कोमलता और विरक्ति की दृढ़ता ने मुझे छू लिया। हम एक दूसरे से एक पिता और पुत्र के समान प्रेम करते थे, किंतु हम समझ गए कि विचरते साधु होने के कारण हम पुनः कभी नहीं मिल पाएंगे। लोगों से मधुर संबंध बनाना और उन्हें छोड़कर पुनः आगे बढ़ जाना, ये कड़वा मीठा अनुभव मेरे द्वारा चुने गए जीवन का एक अंग बन चुका था। ये मेरे लिए कठिन था, लेकिन विरह की पीड़ा संबंधों की मधुरता को मेरे हृदय में जीवंत रखे रखती। मुड़कर कैलाश बाबा से दूर जाते हुए मैंने प्रार्थना की, मैं उन्हें कभी न भूलूं, और आज भी वे मेरे हृदय में विद्यमान हैं। लगभग इन्हीं दिनों मैंने अपने अनुभवों का वर्णन एक पत्र में अपने परिवार को लिखा। प्रिय माँ, पिताजी, मार्टी और लैरी, बेहतर है कि आदमी निर्धनता में रहे बजाय इसकी कि वो अपनी आत्मा को सोने के खोखले महल के लिए बेच दें। बेहतर है अनजान बनकर रहना बजाय इसकी कि अपनी आत्मा को नाम, यश और प्रशंसा के खोखले और निरर्थक सुखों के लिए बेच देना। जहां आंतरिक आज़ादी नहीं है, वहां जीवन नहीं है। बेहतर है कि तुरंत प्राण त्याग देना बजाय इसके कि अपने जीवन के आदर्शों की खोज करने से वंचित रह जाना। मैं यहां पूरब के इन महान स्थलों पर महात्माओं से अमूल्य शिक्षाएं प्राप्त कर रहा हूं। कृपया समझने का प्रयास करें कि ऐसे अध्ययन में काफी समय लगता है। ये शिक्षा अत्यंत गहन है और मैंने तो बमुश्किल से अभी इसकी शुरुआत ही की है। मैं स्वार्थी और अहंकारी हूं। मैं अज्ञानी और सत्य से अनभिज्ञ हूं। भगवान को जानने वालों में शायद मैं सबसे दूर हूं। इसलिए मेरे जैसे अज्ञानी को परम सत्य की उस आनंदमय ज्योति को, जो आप में और मुझ में प्रकाशित है, देखने के लिए बहुत समय चाहिए। सस्नेह रिचर। बचपन में आध्यात्मिक लालसा की जिस चिंगारी को मेरे भीतर स्फुरण हुआ था, वो फ्लोरेंस के बड़े गिरजाघर में प्रार्थना करते हुए लौ बन गई थी। फिर आइल ऑफ क्रीट में ध्यान करते हुए एक ज्वाला के रूप में परिवर्तित हो गई और मध्य पूर्वी देशों की चुनौतियों ने उसमें संघर्ष का ईंधन झोंक कर और अधिक प्रज्वलित तथा उष्ण बना दिया। हिमालय में साधुओं की संगति में घूमते हुए वो पवित्र अग्नि मेरे भीतर अब प्रचंडता के साथ धधकने लगी थी। अपने जीवन को केवल इस उद्देश्य के प्रति समर्पित करते हुए मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वे मेरी सहायता करें। मैं अब 20 वर्ष का हो चला था। मेरी कठिन जीवन शैली ने मेरे वजन को 50 किलो तक गिरा दिया था। जो इस जोड़ी कपड़े मैं पहनता था वे नदियों, झरनों और तालाबों के मटियाले पानी में धोए जाने के कारण मटमैले हो चुके थे। वातावरण के प्रभाव से मेरी त्वचा शुष्क और कठोर हो गई थी। मेरे होंठ फट गए थे और बाल उलझकर जटाएं बन गए थे। मैं रबर की सस्ती चप्पल पहनता था और मेरे पैर मिट्टी से भूरे हो गए थे तथा एड़ियों में बिवाइयां फट गई थीं। मेरे द्वारा चुना हुआ जीवन मेरे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था, लेकिन मैंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। ज्ञान के लिए मेरी उत्कंठा की लौ पहले से ही कहीं अधिक तीव्रता से जल रही थी। एक रमते साधु का जीवन मुझे बहुत पसंद था और मैं आने वाले नए रोमांच की आकांक्षा में तथा आध्यात्मिक पथ पर उन्नत महान साधुओं के संग में अति प्रसन्न था। वन में घूमते हुए मैं अक्सर स्वयं से पूछता, क्या मुझे कभी वो एक मार्ग मिलेगा जिस पर मुझे चलना चाहिए, वो गुरु जिसका मुझे अनुगमन करना चाहिए। एक दिन जब मैं देवप्रयाग में था, मुझे निकट के एक आश्रम में साधुओं के साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। वहां जंगल से एक योगी आया, उसे कोई नहीं जानता था। उसने शहर के सारे चिकित्सकों को एकत्रित होने के लिए विज्ञापन दिया। सब अनेक चिकित्सक जमा हो गए तो वो योगी आया और गरजती हुई आवाज के साथ उसने सभी को चुनौती दी, तुम लोग भौतिकता के रोग से इतने ग्रस्त हो चुके हो कि तुम्हें अपनी संस्कृति से अधिक श्रद्धा आधुनिक विज्ञान में है। तुम्हारे मूर्खता भरे घमन को चूर चूर करने के लिए भगवान ने आज मुझे जंगल से बाहर भेजा है। मैं योग शक्ति से अपनी समस्त शारीरिक क्रियाओं को बंद कर मर जाऊंगा। तुम अपने यंत्रों से मेरी पूरी जांच कर लो, ठीक 30 मिनट बाद मैं मृत्यु से पुनः जी उठूंगा। उसने पद्मासन में बैठकर अपनी कमर सीधी की एवं तीव्र वेग के साथ लगभग 20 बार सांसें ली, फिर पूरी सांस लेकर वो श्वसन क्रिया को बंद करके अचल बैठ गया। प्रत्येक डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप और अन्य यंत्र लेकर जांच के लिए आया, लेकिन कोई भी हृदय की धड़कन, सांस या नाड़ी नहीं पा सका। वे आश्चर्यचकित हो उठे। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार ये मृत है, एक डॉक्टर ने घोषणा की। सशंकित हो मैं भी आगे आया और एक स्टेथोस्कोप लेकर उसकी दिल की धड़कन और नाड़ी की जांच की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। नई दिल्ली में स्वामी राम ने मुझे योग की शक्ति का मंत्रमुग्ध करने वाला नमूना दिखाया था। हिमालय में रहते हुए मैंने भी प्राणायाम और आसनों का अभ्यास किया था ताकि मेरा शरीर और मन भगवान की दैवी शक्ति के साथ और अधिक सामंजस्य स्थापित कर सके। मैंने इन क्रियाओं के अद्भुत प्रभाव देखे थे जिनमें स्वास्थ्य के लाभ और साधकों को द्वारा अपनी शारीरिक अवस्था में फेरबदल करने की क्षमता थी, किंतु ये दृश्य तो वास्तव में आश्चर्यजनक था। ठीक 30 मिनट बाद एक पल का भी विलंब किए बिना उस योगी ने सांस छोड़ी, आंखें खोली, खड़ा हुआ और वापस जंगल में लौट गया। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, वो केवल इन संशयी व्यक्तियों को योग की शक्ति दिखाना चाहता था। सभी डॉक्टर और मैं जंगल में लौटते उस योगी को आश्चर्य से एकटक देखते रह गए। मैं जहां भी जाता, लोग बहुत आदर से एक साध्वी आनंदमयी माँ के विषय में बोलते। मैंने स्वयं उनके अद्भुत गुणों का वर्णन योगानंद परमहंस की प्रसिद्ध पुस्तक योगी कथामृत के अध्याय आनंदमयी माँ में पढ़ा था। देवप्रयाग में गंगा के तट पर एक साधु ने मुझे बताया कि वे हिमालय के देहरादून नगर में रह रही हैं। मैं आज बस द्वारा पूजनीय माँ से मिलने जा रहा हूँ, उसने कहा। मेरे साथ चलने के लिए तुम्हारा स्वागत है। वहां पहुंचने पर मैंने एक अनोखे बरामदे में प्रवेश किया जो माँ के अनुयायियों से भरा था। सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। मेरा मित्र नदारद हो गया। एक छोटी सी भीड़ में जुटे लोग मेरे इर्द गिर्द एकत्रित हो अपनी गुरु माँ की कथाएं सुनाने लगे। मुझे बताया गया कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की गुरु आनंदमयी माँ का जन्म 19वीं सदी के अंत में पूर्वी बंगाल के एक सुदूर गांव में हुआ था। बचपन से ही वे इस संसार की आसक्तियों के प्रति उदासीन थीं और कभी कभी अपने परिवार को अपनी आध्यात्मिक समाधि से भ्रमित कर देती। उनके अनुयायियों के मुख से माँ के चमत्कार, करुणा और भावों का वर्णन सुनकर मैं और विमोहित होता जा रहा था। अचानक सभी अपनी अपनी जगह पर सचेत खड़े हो गए। सादी सफेद साड़ी पहने एक छोटी सी महिला ने सभा में प्रवेश किया। उनकी आंखें हर्ष से चमक रही थी। हाथ जोड़कर हमारा अभिवादन करते हुए कुर्सी पर बैठ गईं। वे दुबली पतली थी, किंतु फिर भी वे एक अलौकिक शक्ति का प्रसार कर रही थी। यद्यपि काल की लकीरें उनके झुर्रीदार चेहरे पर खींची थी, उनका चेहरा एक नटखट बालिके के चेहरे के समान खिला था। वे एक जगन्माता के समान सौम्य और विद्वान प्रतीत हो रही थी। फिर भी उनमें एक छोटी सी मासूम बच्ची जैसा उल्लास भरा था। उनका आचरण उनके हाथ में पकड़े पुष्प के समान कोमल था, लेकिन उनकी अदम्य इच्छा शक्ति का अनुभव पाना सहज था। हमें देखकर मुस्कुराते हुए उन्होंने भगवत नाम कीर्तन आरंभ किया और हम सब उनके पीछे गाने लगे। पूरे कीर्तन में वे ताली बजा रही थी। फिर अनेक क्षण मौन रखने के पश्चात उन्होंने प्रेम, ज्ञान और निस्वार्थता का संदेश दिया। प्रेम का अर्थ ही क्षमा करना है, उन्होंने आरंभ किया। सभी वस्तुओं को पूर्ण के संबंध में देखना ही सच्चा ज्ञान है। यदि आप समझ जाते हैं कि सब कुछ भगवान का है, तो आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। सौम्यता से अपने हाथ से हृदय को छूकर उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। सभी दुख में और मेरा की भावना से उत्पन्न होते हैं। सभी दुख भगवान से विलग रहने के कारण हैं। जब भगवान के साथ रहते हैं तो हमारी सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। एक दुख देकर भगवान दूसरे दुख को दूर करते हैं और एक विपत्ति देकर दूसरी को। जब शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो वे न तो और दुख भेजते हैं न और विपत्ति। हमें सर्वदा इसका स्मरण रखना चाहिए। मेरा हृदय माँ और उनके बच्चों के बीच इस स्नेहिल व्यवहार से द्रवित हो गया। हल्की पवन के चलने पर वृक्षों के पत्तों में सरसराहट होने लगी। ऊपर देखते हुए आनंदमयी माँ रुकी और एक चहचहाती चिड़िया को देखने लगी। उनके कोमल भावों को निहारते हुए लोग आनंद से मुस्कुरा रहे थे। ये जगत सुख और दुख के बीच निरंतर झूलता रहता है, उन्होंने आगे कहा। यहाँ पर कोई सुरक्षा एवं स्थिरता नहीं हो सकती है, केवल भगवान के माध्यम से ही इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। दुख इसलिए भेजे जाते हैं जिससे हमें स्मरण रहे कि हमें अपने विचारों को भगवान की ओर मोड़ना है। वे ही हमें शांति प्रदान करते हैं। जब भी संभव हो आप भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहें। उनका नाम जप करना उनके सान्निध्य में रहना है। यदि आप अपने परम मित्र भगवान का संग करेंगे तो वे अपना वास्तविक स्वरूप आपके समक्ष प्रकट करेंगे। उनकी कोमल दृष्टि से मेरे मन में श्रद्धा और आशा जागने लगी तथा उनके सरल और विनीत स्वभाव ने मेरे हृदय को शांति से भर दिया। यद्यपि वे स्वयं को एक बालिका से अधिक नहीं समझती थी, वहां पर उपस्थित सभी लोग उन्हें माँ के रूप में देख रहे थे। वहां मैंने देखा कि साधारणतः स्त्रियों से दूर रहने वाले बैरागी साधु, योगी और स्वामी भी उनके चरणों पर बैठकर उनके आशीर्वाद की अभिलाषा कर रहे थे। एक दिन जब मैं बरामदे में अकेला बैठा था, आनंदमयी माँ कृपापूर्वक वहां आई। अपना आदर व्यक्त करने के लिए मैंने झुककर उनके चरणों का स्पर्श किया। वे उछलकर पीछे हट गईं। उनका चेहरा नम्रता से झुक गया और वे लज्जित प्रतीत होने लगीं। मेरे अंदर ग्लानी का बवंडर उमड़ पड़ा। यद्यपि उनके चरण छूकर मैं उनके प्रति अपना आदर और सम्मान व्यक्त करना चाहता था, मुझे लगा कि मैंने एक बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर दिया। ये मैं क्या कर बैठा? मैं समझ गया कि भले ही वे एक महान साध्वी थी, नम्रता के कारण वे नहीं चाहती थी कि उनके अनुयायी उनके चरणों को छुएं। आत्मग्लानी की मेरी उस अवस्था में दया दिखाते हुए वे पास ही रखी एक कुर्सी पर बैठ गईं। बच्चे जैसी मुस्कान के साथ उनकी आंखें उठीं और फिर बंद हो गईं। शांति भरे उस क्षण में वे समाधि में प्रविष्ट हो गई। मुझे उनकी अविचलित काया से माँ की ममता के झलकने का अनुभव हुआ। रहस्यमय रूप से उनका चेहरा एक दिव्य बालिका के समान दमक रहा था। एक आत्मीय शांति छा गई। अपनी समाधि से बाहर आने पर वे मुस्कुराई और संकेत कर मुझे अपने निकट बुलाया। उनकी आंखें स्नेह से चमक रही थीं। फिर भी जब मैंने उनकी गहराई से झांका तो वे समस्त इच्छाओं से मुक्त प्रतीत हुई। बिना कुछ कहे उन्होंने एक कमल के फूल को अपने नाक और होंठों से छुआ और उसे मेरे हाथ में रखकर चली गईं। इस अनुभव को हृदय में संजोकर मैंने अपने आगे की यात्रा जारी रखी। साधु के रूप में रहना एक कठिन जीवन था। बिना गर्म वस्त्रों के सर्दियों को सहना, आश्रय के नाम पर नदी के तट, जंगल या गुफाओं की नंगी भूमि पर रहना, सोते जागते हर समय कीड़ों और पशुओं का भय, बीमारी में कोई सहायता नहीं और सबसे अधिक अकेलापन। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं देहरादून से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और हिमालय में और ऊंचे जाकर उत्तर काशी पहुंचा, जिसे अनेक लोग साधुओं के घाटी के रूप में जानते हैं। पुरातन काल से योगी एकांत और ध्यान के लिए इस वन का आश्रय लेते आए हैं। घूमते घूमते मुझे पर्वत की ऊंचाई पर निवास के लिए एक गुफा मिली, जहां से प्रायः मैं नीचे वन को देखता रहता। मैं कई दिनों तक एक तेंदुओ को शिकार की तलाश में घूमते हुए देखता रहा। फिर एक दिन उसने घात लगाकर एक असावधान हिरण पर हमला कर दिया और हिरण तेंदुए के जबड़े की पकड़ में आकर धरती पर गिर पड़ा। वहां सफेद और भूरे रंग के घुमक्कड़ बंदरों के झुंड भी रहते थे, जो एक दूसरे से झगड़ते हुए डाल डाल पर कूदकर फल और बैरों की खोज करते। चितकबरे हिरण हरी घास, पत्तों और झाड़ियों को खाते हुए शिकारी के भय से चिंतातुर इधर उधर देखते रहते। अद्भुत रंगों के पक्षी उड़ते हुए कलियों, कीड़ों और सरस फलों की खोज में रहते। एक दिन मैंने एक किंग कोबरा को देखा, जो शिकार की खोज में धरती और पेड़ों पर सरक रहा था। इस बात से बेखबर कि निकट ही एक नेवला घात लगाए उसके टुकड़े करने के लिए तैयार था। ऐसे थे मेरे पड़ोसी और मैं उनके घर में एक अतिथि। यह स्मरण करते हुए कि कैसे कैलाश बाबा ने मुझे सही भावना विकसित करके इन जीवों के आसपास रहना सिखाया था, मैंने निर्भयता के लिए प्रार्थना की। हर योनि में हर प्राणी को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि इस संसार में बलशाली दुर्बल का शोषण करता है। किंतु मैंने सोचा कि मनुष्य जीवन में पाने के लिए इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ लक्ष्य हैं। यहाँ पर जंगल में अपने निवास स्थल पर मैं अक्सर दिल्ली में खरीदे उस नीले लड़के का चित्र अपने थैले से निकालता और उस पर ध्यान करता। बांसुरी बजाते उस सुंदर बालक के प्रति मेरा आकर्षण निरंतर बढ़ता जा रहा था और मैं सोचता कि वो कौन है। फिर भी मैंने किसी से पूछा नहीं। मुझे लगा कि जब भगवान चाहेंगे तब स्वतः ही इसका रहस्योद्घाटन हो जाएगा। वसंत ऋतु में मैं एक दिन एक मंदिर के प्रांगण में अकेले बैठा मैं प्रातःकालीन सन्नाटे का श्रवण कर रहा था। बीच बीच में मुझे मधु की खोज में एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराते हुए काले भौंरे का हल्का गुंजन सुनाई दे रहा था। उसे देखते ही मैंने अनुभव किया कि मैंने भी उसी के समान जीवन अपनाया था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा रूपी मधु को एकत्रित करने का एक प्रयत्नशील जीवन। किंतु अभी भी एक स्थान, एक पथ और एक गुरु को चुनने के लिए मुझे संपूर्ण अनुभव और ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। अचानक मैंने कुछ दूरी पर एक बच्चे को माँ के लिए रोते देखा। मुझे लगा कि मैं भी आध्यात्मिक रूप से एक बच्चा हूँ। भले ही मुझमें अनायास निश्चलता से रोने की क्षमता का अभाव था, मैंने सोचा कब वो दिन आएगा जब मैं उस बालक के समान अपने प्रियतम भगवान के लिए रोऊंगा, जब हिमालय की साएं साएं करती पवन पेड़ों की पत्तियों को सहलाने लगी मैं सोचने लगा कि जीवन के सार को समझने के लिए क्या आवश्यक है। मैंने उन विचारों को एक पत्र पर अंकित कर अपने परिजनों को भेज दिया। प्रिय माँ, पिताजी मार्टी और लैरी, धरती माँ के उस छोर पर आप सभी कैसे हैं? मुझे लगता है कि हम जितने अधिक दयालु होते हैं, हमें सर्वत्र उतनी ही दया दिखाई देती है, और हम स्वयं जितने अच्छे होते हैं उतनी ही अच्छाई को हम सर्वत्र पाते हैं। आपका रिचर्ड। अचानक घड़ियाल बजने लगे और कुछ ग्रामवासी मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हो गए, जो घने जंगल में साफ किया हुआ एक छोटा स्थान था। बरगद, नीम और इमली के बड़े पेड़ों से भरे उस जंगल में अनेक जंगली जानवर लुक छिप रहे थे। वो मंदिर ईंट का बना एक कमरा था, जिसमें गांव वाले पत्थर के एक विग्रह की पूजा करते थे। भूमि पर सिर झुकाने के पश्चात वे भाव विभोर हो विग्रह के दर्शन करते हुए प्रार्थनाएं, दीप और फूल अर्पित करते। मेरी यहूदी पृष्ठभूमि और इस्लाम एवं ईसाई धर्मों के अध्ययन के कारण मुझे ये कुछ असहज सा लगता और मैं इसमें भाग नहीं लेता था। क्या ये मूर्ति पूजा थी? मुझे वास्तव में मालूम नहीं था। जल्दबाजी में सही गलत अच्छे बुरे की धारणा बनाने की अपनी प्रवृत्ति को दबाते हुए मैंने आशा की भविष्य में मैं इन सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाऊंगा। उसी दिन एक मनमोहक व्यक्ति मेरे पास आए, एक रमते साधु जिनका नाम बाल शिव योगी था। वे लगभग 40 वर्ष के नाटे और गोल मटोल था। उनके काले लहराते बाल, चमकती आंखें और छोटी नाक थी जो उनकी भौहों के साथ बार बार फड़कती रहती थी। वे एक बेचैन बच्चे के समान व्यवहार करते थे। मजाकिया और बातूनी स्वभाव वाले वे चुटकुले सुनाते हुए उत्तेजित अवस्था में इधर उधर घूमते रहते। भिक्षा मांगते हुए वे जोर देते कि उन्हें मिठाई ही दी जाए। इस प्रकार का व्यवहार मैंने आज तक हिमालय के किसी भी साधु में नहीं देखा था, लेकिन जब उनकी योग साधना का समय आता तो वे अत्यंत गंभीर हो जाते। अपने बहुआयामी व्यक्तित्व के कारण वे मेरे चित्ताकर्षक संगी बन गए। हम दोनों ने मिलकर घनिष्ठता भरी मित्रता के कुछ दिन बिताए और फिर मुझे अपने अंतकरण से हिमालय में और ऊपर जाने की एक पुकार की अनुभूति हुई। जब मैं विदा लेने गया तो बालशिव योगी ने मेरी बाह पकड़ ली। नहीं, उन्होंने कहा, आज शाम तुम्हें मेरे प्रवचन में आना ही होगा, ना मत कहना। मैंने जितना मना किया उन्होंने उतना ही जोर दिया। अंत में मैं मान गया। सभागृह में मैंने देखा कि सैकड़ों लोग एक मंच के सामने एकत्रित हो गए थे, जिस पर बाल शिव योगी खड़े थे। मैं मंच के बाईं ओर एक कुर्सी पर बैठ गया। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने सबको अपना खाली हाथ दिखाया, उसे बंद किया, थोड़ा ध्यान किया और फिर भीड़ को अचंभित करते हुए अपना हाथ खोलकर एक लंबा काला पत्थर दिखलाया। वो एक शिवलिंग था। ऐसा लगा मानो वो पत्थर उसकी हथेली पर उग आया हो। भीड़ भौचक की रह गई। जहां तक मैं देख सकता था वो कोई हाथ की सफाई नहीं थी, अपितु असली जादू था। उन्होंने शिवलिंग को चौकी पर रखा, फिर मंत्र जप करते हुए अपनी हथेली से भस्म प्रकट की। ये जादुई भस्म उनकी हथेली से निरंतर बहते हुए शिवलिंग का अभिषेक कर रही थी। एक मिनट में वो शिवलिंग भस्म के पर्वत में दब गया। दर्शकों सहित मैं भी मंत्रमुग्ध रह गया। एक अधेड़ व्यक्ति खड़ा होकर योगी की प्रशंसा करने लगा और एक बूढ़ी औरत उन्हें ऐसे निहारने लगी जैसे वे कोई देवता हों। जैसे ही प्रदर्शन समाप्त हुआ भीड़ उनकी पूजा करने के लिए आगे बढ़ आई। पीछे हटकर मैं आश्चर्य करने लगा कि कैसे एक सीधे सादे आकुल व्यक्ति ऐसी शक्तियों का धारक हो सकते हैं। अपनी खुली हथेलियों को ऊपर उठाते हुए बालशिव योगी ने एक गूंजते स्वर में सभा को संबोधित किया। भाइयों और बहनों, आपने अभी जो कुछ भी देखा है उसे प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। ये एक योग है। ये सभी कार्य आपको केवल तभी चमत्कार लगेंगे जब आपको इनके पीछे छिपे विज्ञान का बोध नहीं होगा। योग साधना से व्यक्ति अपने मन द्वारा सूक्ष्म तत्वों को नियंत्रित करके प्रकृति के स्थूल तत्वों में फेरबदल करना सीख सकता है। अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन आप मूर्ख मत बनिए। जो आपने देखा है वो आध्यात्मिक नहीं है, अपितु मात्र एक भौतिक कला है जिसे ध्यान और तपस्या द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। न तो मैं भगवान हूं और न ही इन अलौकिक कृत्यों का करने वाला अन्य व्यक्ति भगवान होते हैं। मैं मात्र एक साधारण व्यक्ति हूं जिसके पास कुछ योग सिद्धियां हैं। फिर दोनों हाथों से कुछ भस्म लेकर उन्होंने हवा में उड़ाई और कहा, मैं भस्म का निर्माण कर सकता हूं, भगवान ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं। फिर वे एक क्षण के लिए रुके और दर्शकों की ओर देखते हुए उन्होंने अपना अंतिम संदेश कहा, स्वयं को शरीर मन और अहंकार से परे देखना, अपने भीतर आत्मा को जानना, भगवान को जानना और धर्मपरायण बनना, यही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। एकमात्र यही आपको शांति प्रदान करेगा। जब भीड़ उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पंक्ति में खड़ी हो गई तो बाल शिव योगी मेरे पास आया। क्या तुम प्रसन्न हो कि तुम रुक गए, उसने पूछा। हाँ धन्यवाद, मैंने कहा। निश्चय ही उनकी शक्तियों ने मुझे गहराई से प्रभावित किया था, लेकिन उससे भी अधिक सराहनीय उनके द्वारा ईमानदारीपूर्वक वास्तविक सिद्धांतों का वर्णन करना था। मैं समझ गया कि यदि मैं वहां रुककर ऐसे किसी एक सिद्ध योगी से शिक्षा प्राप्त करता तो मैं भी शायद कुछ चमत्कार करना सीख जाता। लेकिन मैं ये भी समझ गया कि सिद्धियों की प्राप्ति आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य कदापि नहीं है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं आपके शब्दों का साक्षात्कार कर सकूं, मैंने कहा। जोर से हंसते हुए उन्होंने एक पुराने मित्र के समान मेरा आलिंगन किया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देने के लिए हथेली खोली, उसे बंद किया और फिर से खोलकर भस्म से ढके एक पवित्र कच्चे और लाल रुद्राक्ष का एक बीज प्रकट कर दिया। वो रुद्राक्ष उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मेरे हाथ में दे दिया। जंगल में लौटकर मैं उस दिन की घटना पर विचार करने लगा। वो अद्भुत था, किंतु हिमालय में समय बिताने के पश्चात वो मुझे विस्मयकारी नहीं लगा। सबसे अद्भुत बात ये थी कि बाल शिव योगी ने उन लोगों को रोक दिया था जो भगवान मानकर उन्हें पूजने आ रहे थे। अमरीका में खिलाड़ियों को उनकी शक्ति और तेजी के लिए पूजा जाता है, कलाकारों को उनकी सुंदरता और प्रतिभाओं के लिए, वैज्ञानिकों को उनके सिद्धांतों और खोजों के लिए, राजनेताओं को उनके भाषण और प्रभाव के लिए, विद्वानों को उनकी बौद्धिक क्षमताओं के लिए और व्यापारियों को उनके धन के लिए। भारत में योगियों को सूक्ष्म शक्तियों पर उनके स्वामित्व के लिए पूजा जाता है। बाल शिव योगी की ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया। सच्ची आध्यात्मिकता भगवान का साक्षात्कार और धर्मपरायणता है, न कि अपने शक्तियों का प्रदर्शन। क्योंकि लोग भगवान की शक्तियों की सराहना नहीं करते, इसलिए वे इस प्रकार के चमत्कारों से प्रभावित हो जाते हैं। एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठकर मैं सोचने लगा कि क्यों लोग इन चमत्कारों को देखने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं। हम जहां भी देखें वहां हमें भगवान के अद्वितीय चमत्कार दिख सकते हैं, किंतु क्योंकि हम उन्हें निरंतर देखते हैं इसलिए हम उन्हें अधिक महत्व नहीं देते। एक बीज को उठाकर मैंने उसका निरीक्षण किया। भगवान ने एक विशाल वटवृक्ष को इस छोटे बीज में भरा है और हर वृक्ष हजारों और नए बीज उत्पन्न करता है। ये चमत्कार ही तो है। हवा में हल्के से उड़ते एक बादल में भगवान इतना जल भर देते हैं कि पूरे शहर में बाढ़ आ जाए। जब स्त्री पुरुष संतानोत्पत्ति के लिए संग करते हैं तो उन्होंने कोई भी अभियांत्रिक योजना नहीं बनाई होती कि कैसे गर्भ में हर स्तर पर बच्चे का विकास होगा, वो स्वतः होता है। क्या चमत्कार है! प्रत्येक योनि में जीव को अद्भुत दक्षताएं प्राप्त होती है। उड़ना, तैरना, भागना, पेड़ पर चढ़ना, दीवार पर चलना या सभ्यता का निर्माण करना, क्या यह सब संयोगवश हो सकता है? सृष्टि का सृजन एक के बाद एक अद्भुत चमत्कारों के अतिरिक्त और क्या है? एक मानव का ऐसे भौतिक चमत्कारों को देखकर प्रभावित न होना बहुत कठिन था, किंतु बाल शिव योगी ने अपने मंत्रमुग्ध श्रोताओं को सही प्रकार से चुनौती दी थी। मैं केवल भस्म का निर्माण कर सकता हूं, भगवान ब्रह्मांडों का निर्माण कर सकते हैं। यहां पे पांचवा अध्याय समाप्त होता है।